आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। फेडरल कोषाध्यक्ष और लेबर कोष प्रवक्ता में आज हुई आधिकारिक बहस। भारत में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कंपनी का IPO आज होगा जारी। और नोवाक जोकोविक पहुंचे मैड्रिड ओपन के तीसरे चरण में। आज नेशनल प्रेस क्लब में उन दो पुरुषों में आधिकारिक बहस हुई जो ऑस्ट्रेलिया के अगले फेडरल कोषाध्यक्ष बनना चाहते हैं। मौजूदा कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग और लेबर कोष प्रवक्ता जिम चामर्स दोनों के पास शुरुआती बयान के लिए 6 मिनट का समय था, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब दिए। यह तब आता है जब अर्थव्यवस्था इस चुनाव के केंद्र में आ खड़ी हुई है, महंगाई 5% से भी ऊपर है और रिजर्व बैंक ब्याज दर 11 साल में पहली बार बढ़ा क्यों मजबूर हो गया है। जिम चामर्स ने टॉस जीतते हुए पहले शुरुआती बयान दिए और प्रेस क्लब से कहा कि लेबर गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग के दबाव को कम करेगी, वेतन में इजाफा देगी और बिना महंगाई बढ़ाए अर्थव्यवस्था की बेहतरी सुनिश्चित करेगी।
What we are proposing is responsible and meaningful change, not radical change. We know that we can't undo all of the damage done over almost a decade in one budget or indeed even in one term. But Australians are asking for better than this. Their government at the same time just promises them more of the same. But more of the same government means more of the same punishing combination of skyrocketing costs of living and falling real wages.
वहीं अपनी बारी पर श्री जॉश फ्राइडनबर्ग ने कहा कि उनकी सरकार अपनी काबिलियत को अर्थव्यवस्था के सबसे मुश्किल दौर में साबित कर चुकी है और भविष्य में भी उनकी योजनाएं कारगर साबित होंगी।
This is the choice. The coalition under Prime Minister Scott Morrison, who's delivered a budget, who's held a treasury portfolio, and Anthony Albanese, who's never delivered a budget, never held a treasury portfolio, doesn't know what the cash rate is, doesn't know the unemployment rate. That's the clear choice for 26 million Australians.
वहीं लेबर नेता एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता बड़े कॉस्ट ऑफ लिविंग संकट के बीच में है। उन्होंने यह भी कहा कि मॉरिसन सरकार में वेतन स्थिर हो गए हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। श्री अल्बनीजी मेलबर्न के चिसहोम की अल्ट्रा मार्जिनल सीट, जो अब की लिबरल के पास है, से बात कर रहे थे। RBA द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के एक दिन बाद श्री अल्बनीजी ने कहा कि ये बढ़त शहरी और कस्बाई परिवारों द्वारा बहुत महसूस की जाएगी।
There is a cost of living crisis. Under Scott Morrison, the combination of low wage growth, rising inflation, and rising interest rates is putting real pressure on working families in the suburbs and the regional towns of Australia. And Scott Morrison seems to think that people have got it easy in this country. Scott Morrison has an excuse for everything and a plan for nothing.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वे कड़ी निंदा के बीच भी न्यू साउथ वेल्स एंटी करप्शन कमीशन संबंधित अपने वक्तव्यों पर अडिग हैं। श्री मॉरिसन ने बार बार कहा है कि इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC राष्ट्रीय स्तर की समिति के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने ICAC को कंगारू कोर्ट कहा था। न्यू साउथ वेल्स ICAC के कमिश्नर स्टीफन रुस्टॉन QC ने इस हफ्ते कहा कि कोर्ट को ऐसा कुछ कहने वाले लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी गंभीरता को नहीं समझते। उन्होंने ऐसे लोगों को बफून कहा है, पर स्कॉट मॉरिसन ने इस निंदा को दरकिनार कर दिया है।
I stand by what I've said about why I don't think that model is a good model for the federal jurisdiction. He can say whatever he likes. He can say whatever he likes. I'm not easily offended. I think you've learnt that about me. I'm quite resilient when it comes to those. He's free to disagree with me if he wishes. I just don't think that their model is the right model at a federal level.
न्यू साउथ वेल्स के राज्य के स्कूल शिक्षक 6 महीने में दूसरी बार बेहतर वेतन और काम की परिस्थिति को लेकर हड़ताल पर हैं। हजारों शिक्षक आज सिडनी के मैक्वारी स्ट्रीट से होते हुए राज्य की संसद की ओर गए और वेतन में बढ़ोतरी, अधिक योजना समय और स्टाफ की कमी की समस्या के निवारण को सुलझाने की मांग की। न्यू साउथ वेल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार इस हड़ताल ने 200 से अधिक स्कूलों को प्रभावित किया है। ब्रैडवुड सेंट्रल स्कूल की शिक्षिका एलिसा स्टीफन्स ने चैनल 10 से कहा कि वे सार्वजनिक शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं।
We have genuine fears about the public education in this state. Without attracting and retaining teachers, we're really struggling. We already are faced with a teacher shortage. It's not just out west anymore. It's Broken Hill to Bondi. It's everywhere. We need more teachers. This government needs to act on wages and on working conditions.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के कई शहरों में जगह जगह अबॉर्शन के कानूनों में संभावित बदलावों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लीक हुए एक दस्तावेज में ये सामने आया है कि कट्टरपंथी बहुल सुप्रीम कोर्ट 1973 का रो वर्सेस वेड मामले में सुनाया गया वो ऐतिहासिक फैसला जिससे अमरीकी राज्यों में अबॉर्शन मान्य किया गया था बदलना चाहती है। चुनने के अधिकार के अभिवक्ता सड़कों पर अबॉर्शन कराने के अधिकार को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं और माय बॉडी माय चॉइस वी वोंट गो बैक जैसे नारे लगा रहे हैं। वीवा रुइज नाम की ये महिला न्यूयॉर्क शहर में करीब 1000 दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ थी।
वी आर हियर टुडे टू शो रेजिस्टेंस टू टेल द वर्ल्ड दैट वी कांट डू बिजनेस एज यूजुअल while this country, this government, more and more everyday fascist tells us that they can be inside our body, take from our body, keep in our body, because we have uteruses. So we have to come out, stop traffic, do whatever we need to do.
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से निकाले गए शरणार्थी बिल्कुल सुरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से शांति बहाल भी की गई थी, लेकिन अब शहर के मेयर का कहना है कि स्थिति फिर तनावपूर्ण है और प्लांट में करीब 200 नागरिक फंसे हुए हैं। अपने रात्रि वक्तव्य में श्री ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सैनिक करार की मान्यता नहीं रख रहे और हवाई हमले रूस की ओर से जारी हैं।
Today, 156 people arrived in Zaporizhzhia, including women and children. They spent more than 2 months in shelters. Just imagine, for example, a child is 6 months old, two of which he spent underground hiding from bombs and shelling. Finally, these people are completely safe. They will get help.
ऑस्ट्रेलिया रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ये प्रतिबंध 70 से अधिक रूसी राजनीतिज्ञों और 30 से अधिक कठपुतली माने जाने वाले यूक्रेनियाई सरकारी कर्मचारियों जो कि दोनेस्क और लुहांस्क के अलगाववादी इलाकों में स्थित हैं पर लागू होंगे। ये तब आता है जब यूक्रेनियाई सरकार का कहना है कि रूसी सैन्य बल मारियोपोल में रक्षित अज़ोवस्टाल स्टील वर्क्स प्लांट पर सीज फायर खत्म होने के बाद से ही हमले कर रहा है। और अब खबरें भारत से। प्रमुख भारतीय सरकारी कंपनी जीवन बीमा निगम का पब्लिक इशू यानी आईपीओ या जिसे कहें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आखिरकार आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। एलआईसी की शुरुआत 1956 में हुई थी, तब इसे 245 निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का विलय और निजीकरण करके बनाया गया था। उस वक्त कंपनी ने 5 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी का काम शुरू किया था। बीमा कंपनी के आईपीओ को एंकर निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आज ये आईपीओ संस्थागत और खुदरा यानी रिटेल निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जा रहा है। बता दें कि लगभग 21,000 करोड़ के वैल्यू का ये अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। सरकार एलआईसी में अपने 3.5% शेयर्स की बिक्री आईपीओ के जरिए कर रही है। इससे 20,557 करोड़ रुपए यानी भारतीय रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। ये ऐतिहासिक आईपीओ आज यानी बुधवार को खुदरा व संस्थागत निवेशकों के लिए खुल रहा है। वहीं इसका सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद भी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आए हैं। ये कोविड के मामलों में लगभग 25% की उछाल है। अब तक कुल टीकाकरण की बात करें तो 189.5 करोड़ वैक्सीन भारत में वितरित की जा चुकी हैं। और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में भारत में 31 लोगों की इस वायरस के चलते मृत्यु भी हुई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.36 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। नोवाक जोकोविक मैड्रिड ओपन के तीसरे चरण में प्रवेश कर गए हैं। विश्व नंबर एक ये खिलाड़ी फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी गैन मॉनफीस को 6-3, 6-2 से हराकर दूसरे राउंड को जीत कर आगे पहुंचे। जोकोविक ने भी खेल में कई गलतियां की लेकिन उन्हें समय रहते संभाल लिया और मॉनफीस अपनी गलतियों को नहीं संभाल सके और अंततः राउंड हार गए। ये जोकोविक की मॉनफीस पर लगातार 18वीं जीत है। अब ये सर्बियाई टेनिस दिग्गज अंग्रेजी खिलाड़ी एंडी मरे के सामने खेलेंगे। और अब एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में बरसात की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में दिन बीतने के साथ बारिश बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी रिमझिम बौछार है। यहाँ अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में पानी गिरेगा। अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप छाई रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।